शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जब से प्रारंभ हुई 1936 में, शुरू से ही हमारी सेवा के मुख्य दो साधन रहे हैं, एक ईश्वरीय ज्ञान और दूसरा है सहज राजयोग। ईश्वरीय ज्ञान के अंतर्गत वो सारे ही मूल सनातन सत्यों का ज्ञान दिया जाता है, जिन सत्यों पर हमारा जीवन चलता है और ये संसार का खेल चलता है। हर सत्र में प्रथम आप ज्ञान प्राप्त करेंगे और साथ साथ फिर योग अभ्यास भी करेंगे। यहां जो राजयोग सिखाया जाता है वो कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, कोई औपचारिक क्रियाएं भी नहीं है। राजयोग का आधार क्रिया नहीं है, साधन नहीं है, कोई गुरु या शास्त्र नहीं है। इस सहज राजयोग का आधार सत्य ईश्वरीय ज्ञान है। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, अभ्यास में लाते जाएंगे, अनुभव की स्थिति पर पहुंचते जाएंगे। योग शब्द का अर्थ है मिलन मनाना, वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन। योग माना मिलन मनाना, कनेक्शन करना, रिलेशन जोड़ना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। वैसे तो हरेक का बुद्धि योग कहीं न कहीं जुड़ा हुआ ही है। कोई व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, पदार्थों में, व्यसनों में, बातों में, हरेक मन और बुद्धि से कहीं न कहीं अटैच है ही, पर इसको योगी नहीं कहते हैं। योग शब्द अलौकिकता का प्रतीक है, इसलिए जब हम अपना बुद्धि योग उस परम चैतन्य शक्ति परमात्मा से जोड़ते हैं तो उसको योग कहा जाता है। मूल तीन बातें योग संबंधित जानना समझना आवश्यक है। एक तो हम स्वयं कौन है, योग अभ्यास करने वाले हम खुद कौन है, हमारा वास्तविक परिचय क्या है। दूसरा है वो परम चैतन्य शक्ति परमात्मा कौन है, जिससे हमें बुद्धि योग लगाना है, और तीसरा है राजयोग की विधि क्या है, किस पद्धति से हम अपने आप को उस ऑलमाइटी परमात्मा से कनेक्ट करें। आज के राजयोग के प्रथम सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहां जाना है। हर धर्म में इस बात का महत्व दिया जाता है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी के भी काव्य में उन्होंने ये गाया है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्जवल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है? हम अपने बाह्य शारीरिक स्वरूप को जानते हैं, जो हमने इस दुनिया में आकर प्राप्त किया है। फिर हमें शरीर का नाम मिलता है, संबंध मिलते हैं, फिर एजुकेशन के आधार पर डिग्री मिलती है, प्रोफेशन करते हैं, पोस्ट पोजीशन मिलती है। हम अपने शारीरिक सांसारिक परिचय को जानते हैं। आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक दैहिक दुनियावी परिचय ही एक दो को बताते हैं। स्पष्ट है, हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए बॉडी कॉन्शियस रहते हैं, देहाभिमान में आकर कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं। कुछ एक कर्म व्यवहार में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। मैं मिस्टर फलाना हूं, मैं युवा हूं, बूढ़ा हूं, काला हूं, गोरा हूं, सुंदर हूं, साधारण हूं, शरीर के नाम रंग रूप आयु की कॉन्शियसनेस रहती है। कुछ एक कर्म व्यवहार में आप देखिए संबंधों का अभिमान रहता है, मैं इनका पति हूं, पता है मैं किसका बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंध के अभिमान में आकर व्यवहार करते हैं। हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती, इसलिए हम अपने आप को अपने प्रोफेशन से आइडेंटिफाई करते हैं और ये कॉन्शियसनेस इतनी बनी रहती है कि रिटायर्ड हो जाने के बाद भी हम कहते हैं मैं एक्स चीफ इंजीनियर हूं, मैं एक्स ऑफिसर हूं, एक्स एमएलए हूं। इसलिए आप देखिए हमारी पर्सनालिटी भी ह्यूमन बीइंग से ज्यादा ह्यूमन डूइंग बन गई है। कौन क्या करता है, किस पोजीशन पर है, उस अनुसार हमारे संबंध चलते हैं। हमें अपनी जाति की कॉन्शियसनेस रहती है, मैं ब्राह्मीन हूं, बनिया हूं, राजपूत हूं, जाति ज्ञाति की कॉन्शियसनेस रहती है, धर्म का अभिमान रहता है, हिंदू हूं, मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, सिख हूं, पारसी हूं। इसलिए धर्मों के नाम पर कितने डिफरेंसेस जीवन में हैं। भाषा की भी कॉन्शियसनेस रहती है, मैं गुजराती हूं, मराठी हूं, तमिल हूं, तेलुगु हूं, पंजाबी हूं, बंगाली हूं। भाषा की कॉन्शियसनेस रहती, इवन नेशनलिटी की कॉन्शियसनेस, मैं अमेरिकन हूं, जैपनीज हूं, चाइनीज हूं। हम कह सकते हैं कि हम टोटल बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं, इसलिए हमारा जीवन सांसारिक बन गया है। प्रैक्टिकली भी आप देखिए, रोज हमारा मैक्सिमम टाइम, मनी, एनर्जी देह के पीछे, दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे, देह संबंधों के पीछे खर्च हो रहा है। हमारा जीवन भोगवादी, भौतिकवादी बन गया है। जीवन के ऐसे स्वरूप में कोई हमें आत्म कल्याण के लिए कहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, तो अक्सर क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। यहां हमें एक क्षण शांति से बैठकर सोचना है कि मैं खुद को देह समझ रही हूं, देह भान में रहती हूं, देह अभिमान में कर्म करती हूं, परंतु क्या मैं शरीर हूं? सोचिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या है? दिनचर्या में मैक्सिमम बोले जाने वाला अक्षर कौन सा है? मैं। पर क्या हमें क्लैरिटी है, मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्या मैं शरीर हूं? जबकि हम जानते हैं कि वास्तव में शरीर क्या है, शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के 5 महाभूत हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। इन 5 तत्वों से ही ये भौतिक जगत बना है। इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो भी 5 तत्वों से बनी हुई चीजें हैं। इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं कि 5 तत्वों का बना मानव शरीर पुनः 5 तत्व में मिल गया। आम भाषा में हम कहते हैं मिट्टी का बना हुआ मानव मिट्टी में मिल गया। स्पष्ट है शरीर तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। जैसे और सब चीजें एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन्स, इन आंखों से जो कुछ हम देखते हैं वो तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है। इसलिए हम कहते हैं नदी अपना पानी नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल नहीं खाता है, सूर्य खुद के लिए रोशनी नहीं देता है। इन सब के उपभोगता अलग शक्ति है। तो जैसे ये चीजें जड़ हैं, परिवर्तनशील है, हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती जाती है, आखिरकार टूट फूट जाती है। इसलिए हम कहते हैं नाशवंत है। तो हमारा शरीर भी तत्वों से बना है, जड़ है, नॉन लिविंग है, परिवर्तनशील है। हर एक खुद खुद के शरीर के साक्षी है, बचपन से लेकर अब तक हम सबके शरीर कितने बदल गए हैं। आखिरकार खत्म हो जाते हैं, लेकिन मनुष्यात्मा जीवात्मा ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, एक ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग चैतन्य शक्ति मिलाकर मनुष्यात्मा जीवात्मा कहा जाता है। अब मानव शरीर के बारे में हमें पूरा ज्ञान है, स्थूल है, इन आंखों से देख सकते हैं, इसलिए शरीर के बारे में काफी ज्ञान है। लेकिन शरीर को धारण करने वाली, शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति है, जिसको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब चैतन्य शक्ति जब तक शरीर में है, हमारे एक दो से संबंध है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, संबंध समाप्त हो जाते हैं। हम कहते हैं प्राण चले गए, दीवा बुझ गया, लाइट हैस गॉन। क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है, पर अनुभव होता है कोई चैतन्य शक्ति चली गई, डैडी बॉडी डेड हो गई, संबंध समाप्त हो गए। हम तुरंत कहने लगते हैं जल्दी करो, जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो, हमारे संबंध समाप्त हो जाते। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम सोल रूह कहते हैं, जिसको हम साइकोलॉजी में साइकी कहते हैं, विज्ञान जिसको कॉन्शियस कॉन्शियंट एनर्जी कहते हैं, जिसको हम लिविंग एंटिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं। सरल शब्दों में हम आत्मा कहते हैं। तो मनुष्यात्मा कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्वों का बना मानव शरीर, दूसरी चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आप सभी से ये है कि मैं कौन हूं, हम कौन हैं, क्या मैं पांच तत्वों का बना जड़ शरीर हूं, या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं कौन हूं? देखने में तो शरीर आ रहा है, जैसे देखने में भौतिक साधन आते हैं कि भाई ये बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, पंखा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, देखने में चीजें आती हैं, लेकिन सत्यता क्या है, रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? देखने में तो बल्ब आता है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, पर सही बात क्या है? इलेक्ट्रिक पावर बल्ब द्वारा प्रकाश के रूप में अनुभव होता है, ट्यूब के द्वारा लाइट के रूप में अनुभव होता है, देखने में आता है पंखा घूम रहा है, पर इलेक्ट्रिक पावर पंखे को चला रहा है, इलेक्ट्रिक पावर लैपटॉप को चला रहा है। तो देखने में स्थूल चीजें आती, देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि मैं जड़ नहीं हूं। शरीर तो जड़ है, तत्वों से बना है। मैं जड़ नहीं हूं, मैं सोचती हूं, विचार करती हूं। ये सोचना ही चैतन्यता की निशानी है। जड़ चीजें सोच नहीं सकती है। जब कोई सब्जेक्ट पर चिंतन नहीं चलता है तो हम कहते हैं दिमाग ही जड़ हो गया है, विचार ही नहीं चल रहे हैं। हमें इच्छाएं होती हैं, स्मृति रहती है, कोई स्वादिष्ट चीज आप खाते हैं, चीज खाकर पूरी कर ली, मुख में वो व्यंजन नहीं है, पर लिया हुआ स्वाद फिर पाने की इच्छा होती है, वो किसको होती है? चैतन्य को होती है। हमें स्मृति रहती है, कोई सुंदर स्थान आप देख कर आते हैं, अब उस स्थान से वापिस घर आ गए हैं, पर देखी हुई सुंदरता फिर याद आती है, वो किसको याद आती है? चैतन्य को स्मृति रहती है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें स्वयं क्रियाशील नहीं होती, हम आउटर फोर्स देते हैं तब वो खिसकती हैं। हम कर्म करते हैं, हमें अनुभव होता है, सही गलत साधारण जो कुछ हम करते हैं अनुभव होता है, सुख दुख खुशी गम अनुभव होता है, हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, अगर किसी के दुख दर्द कष्ट के प्रति हमें जरा भी सहानुभूति ना हो, हम दर्दी ना हो, हमें जरा भी दया रहम प्यार ना आता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ हैं, पत्थर हैं, कठोर हैं, इनको जरा भी दया रहम नहीं। तो दया रहम प्यार सहानुभूति ये चैतन्यता के लक्षण हैं। सिद्ध है हम चैतन्य शक्ति हैं, हम आत्मा हैं, हमारा शरीर है, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। सुनने में कितनी सामान्य बात लगती है, लेकिन ये कितना बड़ा जीवन का सत्य है जो हम भूल गए हैं। खुद को देह ही समझते रहते हैं, देह भान में जीवन जीते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, हम श्रद्धांजलि देते हैं। किन शब्दों में श्रद्धांजलि देते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। देखो, शरीर तो यहां ही पड़ा है, गई कौन? चैतन्य शक्ति आत्मा। शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले। क्या जीते जी शरीर में रहते हम खुद को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? नहीं। देखो, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। दुनिया भर की इंफॉर्मेशंस रखने वाले हम खुद को ही नहीं जानते हैं। जीवन भर खुद को शरीर ही समझते रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। इसलिए भली ये सुनी हुई जानी हुई साधारण बात लग रही हो, लेकिन ये मूल सत्य बात है। इसलिए हमें इस अवेयरनेस में रहना है। खुद को देह समझते समझते बॉडी कॉन्शियस बन गए हैं। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठते हैं तब से लेकर रात सो जाते हैं तब तक हमारा टाइम, मनी, एनर्जी देह के पीछे ही खर्च हो रहा है। देह संबंधों के पीछे, नौकरी धंधे के पीछे। वो नौकरी धंधा भी किस लिए करते हैं? किस लिए करते हैं? पेट के लिए कहते हैं ना, शरीर निर्वाह के लिए, क्योंकि हमें ये मूल सत्य भूल गया है। अब अगर हम कॉन्शियसनेस को राइट बनाना चाहते हैं, सोल कॉन्शियस बनना चाहते हैं, हमें ये स्मृति रखनी है कि मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं। शरीर एक साधन है जिसके द्वारा मैं कर्म करती हूं, इसलिए इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है, स्वस्थ रखना है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना है। तो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य स्वयं के बारे में यही है कि मैं आत्मा हूं, एक चैतन्य शक्ति हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। इसलिए आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। ब्रेन, मस्तक शरीर का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार आप देखिए, भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, ये अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अविनाशी आत्मा स्मृति में किया जाता है। पर हम तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर देह अभिमान में ही रहते हैं, खुद को आत्मा नहीं समझ। यहां हम खुद को आत्मा समझते हैं, यहां हम तिलक नहीं करते हैं, खुद को आत्मा स्मृति में रखते हैं। आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली, मैं मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं मुख नहीं हूं, ये मेरे फिजिकल ऑर्गन्स हैं। मैं इनसे कर्म करती हूं, इसलिए हम इन ऑर्गन्स को कर्मेंद्रियां कहते हैं। और स्पष्टता से समझते हैं, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। अब तक हम किस कॉन्शियसनेस में रहे, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये रॉन्ग कॉन्शियसनेस। शरीर से कोई पुरुष है, शरीर से कोई स्त्री है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। इस गलत कॉन्शियसनेस के कारण आप देखिए रिजल्ट क्या है। पूरा संसार विभाजित हो गया है। कितने डिफरेंसेस मन में उत्पन्न हो गए हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है। कितने भेदभाव रखे जाते हैं। बेटा है, बेटी है, कितना अंतर रखते हैं। ये काले हैं, ये गोरे हैं। हम युवा है, ये बूढ़े हैं। ये हिंदू है, मुस्लिम है। ये पिछड़ी जाति है, ये अगड़ी जाति है। ये सारा भेदभाव बॉडी कॉन्शियसनेस के कर। कहां हम विश्व परिवार की बात करते थे, आज पूरा विश्व विभाजित हो गया है इस देह अभिमान के कारण। अगर हम विश्व परिवार बनाना चाहते हैं, घर में भी भाईचारा सामंजस्य बिठाना चाहते हैं, वो सोल कॉन्शियस लेवल पर ही हो सकता है, बॉडी कॉन्शियस लेवल पर नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये प्रैक्टिस करनी होगी, हमें कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। हम सब आत्माएं हैं, ज्योति बिंदु स्वरूप है, एक परमात्मा के बच्चे, आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को आत्मा समझना, आत्मचिंतन करना। हमें स्पष्ट रहे शरीर एक मोटर कार के समान है, मैं आत्मा इस शरीर रूपी मोटर कार को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा ड्राइवर के समान। दिन रात गाड़ी चलाने वाला एक ड्राइवर खुद को मोटर नहीं समझता है। उनको क्लैरिटी है, मोटर कार अलग है, मैं ड्राइवर अलग हूं। हर क्षण शरीर को चलाने वाली हम चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर से अलग है। कितनी बड़ी भूल खुद के बारे में ही हम करते रहे, हम खुद को शरीर समझने लगे, जबकि हम शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक हूं। मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। शरीर वस्त्र के समान है, मैं आत्मा उसको धारण करने वाली इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हूं। वैरायटी ड्रेस धारण कर इस वर्ल्ड ड्रामा में मैं वैरायटी रोल्स प्ले करती हूँ। मैं एक्टर हूँ। मैं शरीर ड्रेस नहीं हूँ। मैं जो ये रोल्स प्ले करती हूँ वो रोल मैं नहीं हूँ। ओरिजिनली मैं आत्मा हूँ। शरीर एक रथ के समान है। आत्मा को रथी कहा जाता है। शरीर एक पिंजर के समान है। आत्मा को पंछी कहा जाता है। हमें दिन भर बार बार खुद को महसूस करना है। शरीर अलग है, मैं चैतन्य शक्ति अलग हूँ। ये हमें बार बार रियलाइज करना है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को शरीर से अलग आत्मा महसूस करना। आत्मदृष्टि से सबको देखना। देह दृष्टि से देखते हैं तब भेदभाव मन में उत्पन्न होते हैं। हम हरेक को रूहानी दृष्टि से देखें, आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखें। तो आत्मस्मृति में रहना, आत्मदृष्टि से देखना, आत्मचिंतन करना, ये राजयोग का फाउंडेशन है, मूल अभ्यास। अब हम समझेंगे आत्मा माना क्या। शरीर माना पांच कर्मेंद्रिया, आंख, नाक, कान, मुख और हाथ मिलाकर शरीर कहा जाता है। शरीर पांच कर्मेंद्रियों का सेटअप है। आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं। क्योंकि आत्मा अभौतिक है, अलौकिक दिव्य चैतन्य शक्ति है, उनकी ये मुख्य तीन शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन, बुद्धि, संस्कार के चैतन्य समूह को आत्मा कहा जाता है। इसलिए स्पष्ट समझ लीजिए, मन बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है। मन और बुद्धि कोई फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है। आत्मा की चैतन्यता को ही मन और बुद्धि कहा जाता है। जैसे शरीर माना, ऑटोमेटिक पांचों कर्मेंद्रियां मिलाकर शरीर कहा जाता है। सेम मन, बुद्धि, संस्कार मिलाकर आत्मा कहा जाता है। मन शब्द से आप सभी परिचित हैं। अक्सर कहते हैं मन की शांति चाहिए। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी कंप्लेन करते हैं, हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, हमारा मन लगता नहीं, मन भटक जाता है। मन भटकता है मीन्स क्या होता है, क्या होता है? मन कोई भौतिक चीज तो नहीं जो शरीर से निकल भटक जाती है। जब आप कहते हैं मेरा मन भटकता है, एकाग्र नहीं हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? मन भटकता है मीन्स अनेक विचार आते हैं, बैठे हैं परमात्मा चिंतन करने के लिए और हमें अन्य अनेकानेक विचार आते हैं तो हम कहते हैं मन भटक रहा है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहा जाता है, आत्मा की संकल्प शक्ति मनन शक्ति को मन कहा जाता है। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। मेडिकल साइंस बताता है ना कि एक मिनट में मन 30 से 50 विचार कर लेता है, और हम सबको प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि जब हम टेंशन में होते हैं, भय में, चिंता में होते हैं, विचारों की स्पीड कितनी फास्ट हो जाती है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना, विचार अनेक आते हैं, इसलिए हम कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है। राजयोग में हम मन को मारते नहीं हैं, सुधारते हैं। कहते हैं ना, हम तो मन मार के जीते हैं, मन को मारना नहीं है, समझाना है, सही ज्ञान देना है। तो राजयोग में मन को, मन का दमन भी नहीं करना है। कई दैहिक हठ क्रियाएं करके मन को दमन करते हैं, राजयोग में मन का दमन नहीं करना है। हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं, और इस अनमोल विचार शक्ति का उपयोग हम कौन से चिंतन में कर रहे हैं? हर एक अपने आप को चेक करिए, इस अमूल्य विचार शक्ति को अक्सर कौन से चिंतन में हमने लगाए? बेशक जीवन की आवश्यक बातें वो हमें सोचनी है, चाहे शरीर के बारे में, परिवार के बारे में, नौकरी धंधे के बारे में, समाज के बारे में, देश के बारे में, जो जरूरी है वो आवश्यक चिंतन हमें करना है। परंतु हरेक अपने आप को देखिए, क्या हम आवश्यक बातें ही सोचते हैं कि अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की तेरी मेरी दुनिया भर की कितनी बातें हम सोचते रहते हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? इस अनमोल विचार शक्ति को कितना वेस्ट हम कर रहे हैं। आपस में मिलते हैं, तेरी मेरी कितनी बातें करते हैं, तब तो समय की कोई सीमा नहीं रहती। अरे 2 घंटे हो गए बातें करते करते, पता भी नहीं चला, ऐसे कहते हैं। देर रात तक बातें करते हैं, कहेंगे अरे रात के 11 बज गए, पता भी नहीं चला। हम पर चिंतन, शरीर चिंतन, संसार चिंतन, व्यर्थ चिंतन, नकारात्मक चिंतन में कितनी अपनी विचार शक्ति वेस्ट करते हैं। और यहां हम 10 मिनट आत्मचिंतन में बिठाते हैं तो लोग सो जाते हैं। अभी भी आसपास देखिए जरा, हाँ, कोई सो तो नहीं रहा है? ये क्या बताता है? ये क्या बताता है कि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है? हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए स्वचिंतन नहीं चलता है। हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए परमात्मा चिंतन में मन नहीं लगता है। हमें तेरी मेरी करने में मन लगता है? हाँ, उसमें तो बहुत मन लगता है, घंटों बातें करते। हमें दूसरों में इंटरेस्ट है, खुद में इंटरेस्ट नहीं, इसलिए अब स्वयं में परिवर्तन करना है। अब हम अपने मन को आवश्यक चिंतन में लगाएं, व्यर्थ चिंतन खत्म करें। ये भी एनर्जी वेस्ट होती है। और सिर्फ पर चिंतन तक सीमित नहीं रहते हैं ना, हम तो फिर मुख से ग्लानी भी करते हैं, एक दो की बातें करते हैं, तो शब्द भी वेस्ट होते हैं। नकारात्मक चिंतन के बजाय अब हम शुभ चिंतन करें, श्रेष्ठ चिंतन करें। मन में विचार अनेक आते हैं। अभी अगर 1 मिनट में आपको साइलेंस में बिठाऊं, आपको मन में कई विचार आएंगे ना? हाँ, ये क्लास पूरा होगा, हम चाय पिएंगे, नाश्ता करने जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे, कई विचार मन में आ जाएंगे। पर सभी विचार उसी क्षण कर्म में नहीं आते हैं। हम निर्णय करते हैं, अभी हम क्लास कर लेते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे, फिर हम चाय पिएंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। इसलिए कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है तो बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, परंतु आज बुद्धि भी पतित भ्रष्ट बन गई है। बुद्धि से व्यर्थ कर्म करते हैं, बुद्धि से छल कपट प्रपंच में लगते हैं, तो बुद्धि भी पतित भ्रष्ट बन गई। इसलिए अगर बुद्धि को शुद्ध शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं तो हमें बुद्धि योग, बुद्धि का अटेंशन परमात्मा के प्रति करना जरूरी है। भक्ति में भी हम गाते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। क्यों हम परमात्मा को कहते हैं? क्योंकि परमात्मा ही वो परम चैतन्य शक्ति है जो सदा पावन है, जो सर्वशक्तिमान है। जब हम उस परम शक्ति परमात्मा की याद में चिंतन में बुद्धि को जोड़ते हैं तो बुद्धि शुद्ध शक्तिशाली और दिव्य बनती है। और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हर कर्म का प्रभाव आत्मा में संचित होता है। बार 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 जो कर्म करते रहते हैं उसका प्रभाव दृढ़ हो जाता है, इसलिए तब उसे स्वभाव संस्कार कहते हैं। बहनों और भाइयों, कर्म ही संस्कार बनते हैं। जिसको हम हैबिट कहते हैं, नेचर कहते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स कहते हैं, सब कॉन्शियस कहते हैं। सरल शब्द में हम उसे संस्कार कहते हैं। कर्म का प्रभाव आत्मा में जो रिकॉर्ड होता है उस संचित प्रभाव को स्वभाव संस्कार कहते हैं। इसलिए विचार कर्म का बीज है। हर बात पहले मन में आती है, फिर वाणी से बाहर निकलती है, कर्म में आती है। विचार कर्म का बीज है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। बार 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 जिस प्रकार के कर्म आप करेंगे वो आपकी हैबिट बन जाती है, आदत संस्कार बन जाता। और जैसे संस्कार ऐसी ही इच्छाएं बार बार होती है, फिर परवश होके कर्म कर देते। हम सब जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती हैं तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती हैं, लेकिन जीवन भर किए हुए कर्मों से बने संस्कारों को साथ ले जाते। जैसे संस्कार ऐसी आत्मा की गति होती है, पुनः आगे ऐसी ही जीवन स्थिति उससे प्राप्त होती है। ये पूर्व कर्मों के हिसाब किताब का फल। इसलिए संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, व्यवहार को बदलना चाहिए। अगर हम अपने व्यवहार को, बिहेवियर को चेंज करना चाहते हैं, हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए। इसलिए राजयोग, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन का अभ्यास है। इसमें कोई शारीरिक क्रियाएं नहीं, क्योंकि राजयोग मन बुद्धि संस्कार को शक्तिशाली शुद्ध बनाने के लिए। अब हम हरेक अपने अपने संस्कारों को देखें। हमारे संस्कार कम या ज्यादा मात्रा में बिगड़ गए हैं, विकृत हो गए हैं। हर एक अपने आप को देखे। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, फलाना बहुत अभिमानी है, झूठा है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं, पर खुद को देखना है, मेरे संस्कार किस किस बात में विकृत हो गए। कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश, कोई मोह में फंसे हुए, कोई ईर्ष्या, वैर, द्वेष। आज हम सभी आत्माओं के संस्कार विकृत हो गए। इसलिए सभी पतित, दुखी, अशांत बन गए। यहां हमें एक और सत्य समझना है कि बेशक हम पतित, दुखी, अशांत, कामी, क्रोधी, अभिमानी बन गए हैं, परंतु हमें जीवन में क्या चाहिए? हरेक को जीवन में क्या चाहिए? हमें शांति चाहिए कि अशांति चाहिए? क्या चाहिए? हर एक को शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आत्माएं ओरिजिनली शांत स्वरूप हैं। हमारी ओरिजिनल नेचर शांति की। इसलिए गुस्सा करके भी आखिर शांत हो जाते हैं। कहते हैं ना 24 आवर्स कोई भी गुस्से में नहीं रह सकता है। गुस्सा करके आखिर हम शांत हो जाते हैं। तब हम कहते हैं अब आपका मिजाज शांत हुआ, ठंडा हुआ, अब हम आपसे बात करें, हाँ? ये सिद्ध करता है हमारी ओरिजिनल क्वालिटी शांति की है। इसलिए अगर आप ऐसा सोचेंगे और कहते रहेंगे कि मैं कहता हूं ना मेरा स्वभाव गुस्से का है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अगर यही सोचेंगे यही बोलेंगे तो आप गुस्सा ही करते रहे। अब आप ये स्मृति रखें, मैं आत्मा शांतात्मा, यहां जो हर बात में ओम शांति शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका अर्थ है ओम मीन्स मैं आत्मा शांतात्मा, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी शांति है। इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए, हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए, क्या चाहिए? सुख चाहिए। हर इंसान सुख के लिए प्रयास करता है। हम धन कमाते हैं, साधन खरीदते हैं, सुविधाएं बनाते हैं, पर इन साधन सुविधाओं का सुख भी तब महसूस होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं। अगर मेरी स्थिति सुख स्वरूप नहीं है तो अपार वैभव महल में भी मुझे सुख नहीं लगता है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, ये स्मृति मुझे रखनी। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, या कोई हमारी घृणा नफरत करे वो अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? प्यार। हर आत्मा को शुद्ध निस्वार्थ प्यार चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमारी ओरिजिनल क्वालिटी प्रेम की है। हम याद रखें मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, वो सच्चा प्यार नहीं है इसलिए घृणा नफरत तिरस्कार है। हमें खुशी में सब्र रहे वो अच्छा लगता है, कोई निराश हताश रहे डिप्रेस रहे वो हमें अच्छा नहीं लगता है ना, हम उनको खुशी में लाने की कोशिश करते। आत्मा आनंद स्वरूप, तो शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति, ये हर आत्मा की ओरिजिनल नेचर है, ये हमारे असली सात गुण हैं। मैं आत्मा इन सात गुणों का स्वरूप हूं। शरीर पांच तत्वों से बना है, मैं आत्मा सात गुणों का स्वरूप। ये शांति सुख आनंद प्रेम पवित्रता ज्ञान और शक्ति मुझ आत्मा में समाये हुए हैं, उसे बाहर नहीं ढूंढना है। इसलिए कहते हैं ना, शांति जंगलों में नहीं है। जो जंगलों में गए थे वे भी अब वापस शहरों में आकर बैठे, शांति के लिए बाहर भटकना नहीं है, कहते हैं ना भीतर जाना है, मीन्स आत्मस्थ होना है, सोल कॉन्शियस बनना है। सुख साधनों में नहीं है, साधनों का सुख भी तब अनुभव होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप। आनंद फिल्मों में होटलों में नहीं है, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। अगर मेरी आत्मा स्थिति खुशी की नहीं है, कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो, मुझे मजा नहीं आता है। इसलिए हमें सोल कॉन्शियस आत्मभिमानी बनने की आवश्यकता है। जैसे ही आप स्व में स्थित होंगे, आत्म कॉन्शियस बनेंगे, मन शांत होने लगेगा, हमें खुद में ही आनंद सुख का अनुभव होगा। लास्ट बात, हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए यह दुनिया कर्म क्षेत्र है। चित्र में सबसे नीचे आसमानी रंग से बताया है, वो ये साकार मनुष्य लोक है। ये हमारा घर नहीं है, ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है। हम तो इस दुनिया को ही घर समझकर मन बुद्धि के बिस्तर खोल के बैठ गए हैं, जैसे हमें यहां से जाना ही न हो, जबकि हर कोई जानते हैं और कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। जानते हैं ना सभी, पर देह अभिमान में आ गए, दुनिया में आसक्त हो गए हैं, इस सत्य को भूल गए हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तब फिर याद आता है, तब कहते हैं देखो चला गया, क्या लेके गया, फिर भूल जाते हैं। इसलिए ये सत्य याद रखना है कि हम आत्माओं का असली घर इस दुनिया से दूर परम धाम है, शांति धाम, मुक्ति धाम जिसको कहते। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व है जो परम धाम में छाया है। वहां हम आत्माएं निवास करती, वो हमारा असली वतन, मूल वतन है, वो रूहों का घर, सोल वर्ल्ड, साइलेंस की दुनिया है, क्योंकि वहां आत्मा को शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, हलचल नहीं, आवाज नहीं, वो शांति की दुनिया। ये फिजिकल वर्ल्ड है, यहां हमें शरीर ऑर्गन्स मिले हैं, हम आवाज में आते हैं, ये टॉकी वर्ल्ड है। इस दुनिया में रहते हुए अगर ये स्मृति रहे कि मेरा असली घर परम धाम है, ये दुनिया तो मेरे लिए सिर्फ कर्म क्षेत्र है, तो हम इस दुनिया में रहते भी अनासक्त कर्म योगी बन सकते हैं। इस शरीर में रहते अगर मुझे ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूं, तो हम देह द्वारा हर क्षण कर्म करते भी सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। तो ये है राजयोग का पहला लेसन, हमारा सही परिचय, आत्म परिचय। अब हम आत्म स्मृति का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाए, अपना डायरी, पर्स, फाइल, हैंडबैग, मोबाइल, सब चीजें एक तरफ समेट के रख दीजिए। हाथ में, गोद में लेकर गले में लटका के ना बैठे। एक दो से अलग अलग होकर बैठिए, टच करके ना बैठे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से अपने असली घर परम धाम जाएंगे, मन की आंख से अपने घर को देखेंगे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें, आंख बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आंख बंद करके बैठेंगे आप सो जाएंगे, निंद्रा आ जाएगी। आंखें खुली रहें, मन में स्व चिंतन करना है। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं गाइड करूंगी, कमेंट्री दूंगी। आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, जो विचार मैं आपको दूं मन ही मन दोहराना है, अर्थ समझना है, रियलाइज महसूस करना है। इस अनुभूति में स्थित रहना उसे योग कहते हैं। आंखें नेचुरल खुली रहे। आज मैं आपको अभ्यास कराती हूं, आप मेरे मस्तक में देखें, मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा। मैं एक चैतन्य शक्ति, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों की कंट्रोलर हूं। हर क्षण शरीर द्वारा कर्म करते हुए मैं शरीर से अलग हूं। मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर इस दुनिया से दूर शांति धाम है, जहां मैं आत्मा अपनी अशरीरी विदेही आत्मा स्थिति में स्थित ओरिजिनली मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वधर्म शांति है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन अंतर्मुखी बनने लगता है। मैं स्व में केंद्रित होने लगती हूँ। मैं आत्मा शुद्ध, प्रबुद्ध, पवित्र हूँ। मैं सत्य हूँ, चैतन्य हूँ, आनंद स्वरूप हूँ। जैसे जैसे सोल कॉन्शियस बनती जाती हूँ, मुझे स्वयं में शांति, आनंद, सुख का अनुभव होता है। मैं आत्मा हूँ। दिव्य ज्योति बिंदु हूँ, शुद्ध चैतन्य शक्ति हूँ। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ। मैं एक शक्ति हूँ। ओ